आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल्ल के समय सार गाथा 38 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराय गौरव क्या चकार के चित्त भावाय भावाय सर्व भावन
आचार्य कुंड कुंड देव ने 2000 वर्ष पहले इसे इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया, इसकी 38वीं गाथा पर विचार करना है। गाथा की उत्थान का ऐसी है कि अथैवम दर्शन ज्ञान चारित्र परिणतस्य आत्मनः कीदृक स्वरूप संचेतनम भक्ति इति आवेदन नुपसरहति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से परिणत आत्मा का स्वरूप के बारे में विचार कैसा होता है, उस स्वरूप का संचेतन कैसा होता है, इस बात को बताते हुए इस रंग भूमि का पूर्व रंग का समापन करते हैं। अभी तक 37 गाथाओं में अज्ञानी की कैसी मान्यता होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने वाले के लिए क्या करना चाहिए, कैसे वस्तु का स्वरूप समझना चाहिए, ज्ञेय भावों से और भावक भावों से भिन्नता का स्वरूप क्या है और उसे हमें कैसे जानना चाहिए, ये सब बातें कहते आए थे। अब ये जो रंग भूमि का प्रकरण है वो समाप्त होता है, उसकी ये अंतिम गाथा है। तो वो कहते हैं कि उनकी दृष्टि में मानो वो आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो गया। अब वो कोई श्रोता हुआ कि नहीं हुआ ये तो सब अपनी अपनी जाने, लेकिन आचार्य देव तो कहते हैं कि हमें एक प्रकरण पर पूरा प्रकाश डालने के बाद आगे बढ़ना ही है, और आगे बढ़ेंगे तो अब अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ था और अब हो गया है, ऐसा मान करके हम बात करते हैं। बाबूलाल जी साहब, इस गाथा का अर्थ हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए। तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणत भगवान आत्मा का स्वरूप संचेतन किस प्रकार होता है। स्वरूप संचेतन किस प्रकार होता है माने वो अपने आत्मा के बारे में क्या सोचता है, क्या विचारता है, क्या चिंतन है, उसका क्या निर्णय है, अभी तक उसने क्या समझा है, उसकी चिंतन प्रक्रिया कैसे चलती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो इनमें लिखा रहा, अब इस प्रकार ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणत आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसा होता है, यह कहते हुए आचार्य इस कथन को समेटते हैं। ये दुकान बंद करने का समय है, एक कथन को वो समेट रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं अंत में ये कह के। इस गाथा को अभी अपन पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसका अर्थ भी करेंगे, टीका से भी करेंगे, लेकिन मोटा मोटा तो अपन जानते ही हैं कि अहम को खल शुद्धो दंशन रान मयो सदा रूवी नवियत मध्य किंत अन्नम परमाणु मित्तम्पी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन मय हूँ, मैं सदा रूपी हूँ और अन्न परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। नीचे की पंक्ति पर मेरा एक प्रश्न है कि आचार्य कहते हैं कि अन्न परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, तो ज्ञानी आत्मा ऐसा सोचता है पर अज्ञानी को कैसा सोचना चाहिए। अज्ञानी की जो बात की थी ना तब भी तो आप यही बताते आ रहे हैं ना, ज्ञेय भावों से भिन्न था और भावक भावों से भिन्न था। 31-32वीं गाथा में साफ जब जैसे लेकर के और ये 36वीं-37वीं गाथा में बहुत स्पष्ट शब्दों में क्या है ना, धर्म आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, राग आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। यही तो अपने पिछली गाथा में भी तो यही कहा था, नत्थी मम धम्म आदि धर्म आदि दिव्य मेरे कुछ भी नहीं है, मैं तो एक उपयोग मैं हूँ। और ऐसे ही नत्थी मम मोह आदि ऐसा है, नत्थी मम को भी मोह बुद्धि उपयोग ये है, मैं मको ये राग देश मेरे नहीं है और धर्म आदि मैंने गे पदार्थ मेरे नहीं है। और यहाँ भी यही कह रहा है कि अन्य परमाणु मात्र मेरा नहीं है, तो ये ज्ञानी और अज्ञानी के में फर्क क्या पड़ा? जो कहते हैं कि अब हम संबंध ज्ञान चाहते थे पढ़ने में आत्मा की बारे की बाकी बात करते हैं कि वो कैसा सोचता है वकील साहब, तो ऐसा फर्क तो कुछ हमें दिखता नहीं है। जो 36वीं और 37वीं गाथा में जो बात करी है और भी पीछे से करी है वो तो उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें तो बहुत साफ साफ कहा ना कि धर्माधिक द्रव्य मेरे नहीं है, तो उसमें धर्म अधर्म आकाश काल इस सारे आ गए ना, पुद्गल भी आ गया, देह भी आ गई, कर्म नो कर्म सब आ गए। फिर अपने आत्मा के विकारी भाव रहे तो नतिम मोह आदि, तो उसमें वो आ गए। अब ये इन सबसे भिन्नता की भावना तो 36वीं और 37वीं गाथा में इतने जोर से नचाई है, और अब ये कहते हैं कि वो भी ये सोचता है कि अन्न मेरा परमाणु मात्र नहीं है। रामकिशोर जी, इसमें क्या फर्क हो गया जो ऐसे वे ज्ञानी का संचेतन कहते हैं और उसे कहते हैं कि अभी तक समय से जानता है तो वो परिणत नहीं हुआ था उत्तमचंदी साहब? तो इसका उत्तर एक ही है, और वो ये तो मुक्ति का मार्ग तो ज्ञानी और अज्ञानी के लिए एक ही सा है, उसमें फर्क कैसे आ जाएगा? वो जो पिछली गाथाओं में कहा गया है कि धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं है और मोह आदि भाव मेरे नहीं है, वो कोई अज्ञानी की मान्यता थोड़ी बताई, वो तो ज्ञानी अज्ञानी को समझा रहे हैं। वो भी ज्ञानी की बात ही है, जो हम ये कहते हैं अज्ञानी अज्ञानी की, अज्ञानी की बात कहां से आई? बात तो ज्ञान की ही है ना, सच्ची बात है ना, लेकिन फर्क इतना है कि ज्ञानी धर्मात्मा अज्ञानी को ऐसा समझा रहे हैं, और अब ये कहते हैं कि वो अज्ञानी जो उनके समझकर देशना लब्धि होने के बाद फिर प्रायोग लब्धि पूर्वक कर्ण लब्धि में परिणत हो गया, तो अब वो ऐसा समझने लग गया है, तो उसमें अंतर आएगा कहां से? खबरा जी समझे ना, जो हम अंतर देखना चाहते हैं तो बात तो वही की वही आनी है ना। चलिए अभी एक अध्यापक विद्यार्थी को समझा रहा है, ऐसा तुम्हारी समझ में आ गया कि हाँ आ गया, तो बताओ क्या समझ में आया? तो वो विद्यार्थी क्या बोलेगा? जो अध्यापक ने बोला वही तो बोलेगा ना, तभी तो समझ में आ गया माना जाएगा। यदि वो अलग बोले तो समझ में आ गया कैसे माना जाएगा? तो अभी तक तो गुरुजी की समझ की बात थी और अब वो शिष्य की समझ की बात हो गई, बात तो वही रहेगी, अंतर कैसे आएगा? ठीक है ना समझनी, तो हमें अरे ये भी तो अज्ञानी की गाथा है, अज्ञानी की गाथा अज्ञानी की कोई गाथा नहीं, और सब गाथाएं अज्ञानियों की हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों ने सारी जिनवाणी अज्ञानियों को समझाने के लिए ही लिखी है, ध्यान रहे ना, तो सब अज्ञानियों के लिए है और सब ज्ञानियों ने लिखी है, इसलिए सब ज्ञानियों की गाथाएं। ऐसा कोई डिवीजन करना उसमें संभव कि नहीं है कि ये ज्ञानी की गाथा है और ये अज्ञानी की गाथा है? जरा विचार करो अपने गंभीरता से चित्त में कि देशना लब्धि सिर्फ सम्यक दर्शन में ही होती है, सम्यक चात में देशना लब्धि होती कभी? रामकिशोर जी, पांच लब्धियां जो है ना उनमें जो देशना लब्धि है सम्यक चारित्र में तो करण लब्धि के द्वारा होती है, लेकिन सर्वोत्तम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि फिर नहीं होती आगे चल के, कर्ण लब्धि द्वारा भी होती है। ये दर्शन मोह के नाश करने के लिए भी कर्ण लब्धि होती है और चारित्र मोह को नाश करने के लिए भी तीन करण होते हैं, जो आठवें सातवें आठवें नौवें दसवें गुणस्थान में होते हैं ना, वो अनुवृत्तिकरण पूर्वकरण वहां होती है, लेकिन बाकी की चार लब्धियां चारित्र के लिए नहीं मानी गई है। काय के लिए मानी गई है? सम्यक दर्शन के लिए मानी है। उसका अर्थ ही ये है कि समझने समझाने का काम तो सम्यक दर्शन के लिए ही है, और इसलिए सम्यक दर्शन जिन्हें प्राप्त करना है वे मिथ्या दृष्टि होंगे, तो समझने समझाने का मुख्य काम तो मिथ्या दृष्टियों के लिए ही है, इसलिए तीर्थंकर भगवान की द्वादशांग वाणी सब मिथ्या दृष्टियों के लिए ही है। क्यों उत्तम जी साहब, अब गौण रूप से आचार्य भगवंत भी उसका अभ्यास करें और ज्ञानी धर्मात्मा भी उसका अभ्यास करें तो निषेध क्या है। परस्पर में चर्चा करें, वार्ता करें, मंथन करें, लिखें, पढ़ें, पढ़ाएं, और ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि दो ही काम करने लायक रह गए, एक तो आत्मा का अनुभव, एक ज्ञान और एक अध्ययन। ज्ञान और अध्ययन ऐसा था ना, अरे ध्यान और अध्ययन, तो ध्यान कह लो वही आत्मा का ज्ञान अनुभव और दूसरा है अध्ययन। यही तो मुनिराजों की भूमिका के कार्य रह गए, ज्ञानी धर्मात्माओं के भी यही काम तो रह गए ना, बाकी कोई काम थोड़ी है। गृहस्थी वृष्टि तो मजबूरी है उनकी, वो तो उन्हें भोगनी पड़ती है, वो करते थोड़ी है। गृहस्थी में भी कदाचित रहे तो और अपने जरूरत नहीं है तो भी करें क्या, उन्हें जरूरत नहीं है तो उनके मंथन की जरूरत बाकी के अज्ञानियों को है, तो उन्हें अभी देशना लब्धि की जरूरत है कि नहीं है, और उन्हें अपने भावना की दृढ़ता के लिए जरूरत है, माने उनकी समस्या तत्व के निर्णय करने की नहीं है, निर्णय तो हो चुका है, आगम और अनुमान से हो चुका और अनुभव से भी हो चुका है, अब तो उसी के मंथन में उन्हें रहना है। और मैं कहता हूं मंथन में क्या रहना है, मंथन तो उनकी रुचि का परिणाम है। देखो मैं आपको एक बात कहता हूं तो आपको ये बात ख्याल में आएगी, अपन कहते देखो भैया तुम आओ मंदिर आओ प्रवचन में बैठो पंच कल्याणक में आओ लाभ लो तो तुम्हारे परिणाम सुधरेंगे, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, परिणाम सुधरेंगे, कुछ ज्ञान सीखने को मिलेगा, शुभ भाव तो होगा और नहीं होगा तो कुछ। तो मैं इससे जरा उल्टा कहता हूं कि आने के बाद शुभ भाव होंगे, परिणाम सुलटेंगे, ये कहां से लाए। अरे तुम्हारे परिणाम सुलटे और शुभ भाव हुआ तब तो यहां आए हो, वो काम तो वहीं से शुरू हो गया, यहां थोड़ी शुरू करना है। अपने यहां एक दृष्टाष्टक स्तोत्र होता है, सुना कभी ना आपने, एक आठ छंद बनाए भगवान की भक्ति के और उसमें नाम रखा दृष्टाष्टक स्तोत्र। महावीर अष्टक तो बहुत होते हैं और भी सुना, मंगलाष्टक भी सुना होगा। ये दृष्टाष्टक क्या है कि जब आप घर से चलो और मंदिर तक पहुंचो तो उसके बीच में जो स्तुति भगवान की करो उसका नाम है दृष्टाष्टक स्तोत्र। मंदिर में जाने के बाद क्या बोलो ये बात नहीं, हमारे आचार्यों ने तो वहां से इंतजाम किया है कि तुम घर की देवरी से हाथ में चावल लेके चले, ख्याल में आया ना, और धर्म शुरू हो गया, वो भी निश्चय वाला धर्म नहीं, घबराना नहीं। और उसमें एक पंक्ति आती है दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवता प्यहारी, पहली पंक्ति है कि मुझे जिनेन्द्र भगवान का भवन मंदिर दिखाई दे गया, वहां से मंदिर की वो दिखाई देगी ना सुरई कलश, तो वहीं से हमारे दिमाग में भावना जगने शुरू हो गई दृष्टम जिनेन्द्र भवनम, कैसा है भवता प्यहारी, संसार के संताप को हरण करने वाला है। तो शुभ भाव नहीं हुआ तो यहाँ आए कैसे बोलो। आज तो कुछ जमाना कुछ कैसा हो गया है, पहले के जमाने में शिखर जी की यात्रा करने यहाँ से रवाना होते थे छिंदवाड़ा से, तो उस दिन से ही पुण्य शुरू हो जाता था, और आज तो वहां पहुंच के भी होता कि नहीं होता भगवान जाने। महीनों पहले से तैयारी, क्या शुद्ध आटा की भोजन की इसकी व्यवस्था में जुट रहे हैं, ये लग रहे हैं, अब वो शुभ भाव पूर्वक ही है कि नहीं है। अरे क्या करना क्या करना, सब जगह मिलता, हर सीजन बच्चा मिलती है, कहीं नहीं मिलती, जहां तो वहां मिलती है, ये तेरा अशुभ भाव से शुरू होता है। फिर वो यहां से जाते थे रस्ते भर स्तुतियां बिनतियां, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे हो, क्यों करते थे कि नहीं करते थे, थोड़े बुजुर्ग लोग होंगे उन्हें थोड़ा थोड़ा अंदाजा होगा, रस्ते में ही सकल गए गाय चौधरी शुरू कर दी, राजा राणा छत्रपति शुरू कर दी, जो जिनको याद था वो बराबर चालू रहता है। तो मंदिर में आकर तुम्हें अशुभ भाव का नाश करना है, मंदिर को और अपवित्र करना है क्या यहां लाके आकर,
अरे अशुभ भाव का नाश तो उसी समय हो गया जब आपने यहाँ को मुक्त किया, जब आपने यहाँ आने की सोचना शुरू की, उस वक्त ही अशुभ भाव का तो नाश हो गया। अब यहाँ तो शुभ भाव का क्रिया पांचा करना है, क्यों? तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये तो तत्व ज्ञान की बात जब उसके मन में आई, शुभ भाव तो वहीं से शुरू हो गया। सम्मान दर्शन के होने के पहले पहले तो ना मालूम क्या क्या हो जाता है। बनासी दास जी टोडरमल जी की भाषा में कहूं, और भी सब शास्त्रों में सब जगह है, हे अज्ञानी तूने अशुद्धता में शुद्धता मानी के नहीं मानी, नहीं मानी तो मानी तो शाबाश और नहीं मानी तो तेरा भाग्य प्रमाण। क्या मतलब? वो तो कहते हैं कि सम्मान दर्शन नहीं हुआ और शुद्धता प्रकट हो गई, यही है नमस्कार। क्यों करे तो मिथ्यात्व का नाश काय से हुआ? अशुद्धता से हुआ। मिथ्यात्व का नाश क्या स्वभाव से हुआ? सम्यक दर्शन तो पैदा हुआ है कर्ण लब्धि के अंतिम समय में, और कर्ण लब्धि के काल में जो मिथ्यात्व के नाश की सारी प्रक्रिया चली है वो कौन से भाव से हुई? शुद्ध भाव से या स्वभाव से? क्यों? तो वो कहते कि नहीं, उसके अंदर भी गर्भित शुद्धता है और उससे ही उसका नाश हुआ। तो तू कहता सम्मान के पहले शुभभाव, शुभभाव तो बहुत दूर शुद्ध भाव भी प्रकट हो जाएगा, लेकिन इतनी सी बात है कि वो शुद्धता गर्भित रहेगी, अभी उसका जन्म नहीं हुआ, गर्भ में है। तो गर्भ में शुद्धता होने से इतना काम हो जाता है। भगवान गर्भ में आते हैं ना, उसके 6 महीना पहले से रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। वो बात तो मैं शाम से शुरू करूंगा, शाम के व्याख्यान पंच कल्याणक के संदर्भ में होंगे, और सुबह जितने भी मौका मिलेगा तो उसमें अपने तात्विक विषय समय सारा जी के विषय में चलेंगे। फिर जैसी जनता होगी उस हिसाब से दिख जाते हैं कि ये कृष्ण मुमुक्षु है या गैर मुमुक्षु है, जनरल पब्लिक है, उसके हिसाब से उसका वो बदलता रहेगा ट्रांसमीटर। ज्यादा कुछ घोषणा नहीं की जा सकती क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, लेकिन चलेगा बढ़िया ही। चलो तो क्या बात चलती थी अपनी कि वो तो अंदर इतना काम तो पहले शुरू हो जाता है। तो आप क्या समझते ज्ञानी जब चिंतन करेगा जब तत्व की बात आएगी, ज्ञानी समझते ज्ञान चात परिणत हो गया और पहले अज्ञान दिशा में गप्पे ठोकेगा, ऐसा था क्या? तो ज्ञानी और अज्ञानी के तत्व चिंतन में और चर्चा में कोई खास फर्क नहीं होता और नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अज्ञानी कौन सा लेना? वो सम्यक्त के सन्मुख वाला अज्ञानी लेना, वो देशना लब्धि से आगे बढ़कर प्रायोगिक लब्धि में चलने वाला अज्ञानी लेना, वैसा अज्ञानी नहीं लेना जो मास मद्रा में लिप्त है, विषय कसाय में लिप्त है, साथ नरक की जाने की तैयारी कर रहा है। अज्ञानी तो उन्हें भी कहते ना भाई साहब, हिंदू मुसलमान ईसाई सब एक अपने देखा था ना, वहां से जैसे कोई डाकू भी हो तो उसे भी अज्ञानी तो कहते हैं ना, तो ऐसे अज्ञानी की बात नहीं समझना यहाँ। लेकिन जो कालांतर में शीघ्र ही कलंत, शीघ्र में अंतर मुहूर्त में ही नहीं और अनंत काल में भी नहीं, माने 10-20-50 वर्ष में इसी जिंदगी में या तो अगले भव में एकाद भव में जो आत्मा का अनुभव करने वाले हैं, ऐसे ज्ञानियों के चिंतन मनन में, ऐसे अज्ञानियों के चिंतन मनन में और ज्ञानियों के चिंतन मनन में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, है ना? क्यों नहीं दिखाई देगा? अंतर तो अंतर का है, बाहर का नहीं है। अंतर का क्या है कि ये उसने जो बोल रहा है ज्ञानी उसको देख लिया और जान लिया है, सीधा अनुभव कर लिया है प्रत्यक्ष, और वो जो अज्ञानी है वो उसी बात को शास्त्र से पढ़कर, गुरु के मुख से सुनकर और तर्क की कसौटी पर कसकर और उसी बात का वो प्रतिपादन कर रहा है। इसे अंतर क्यों आना चाहिए? ठीक है नमाबुला जी साहब, बहुत विचार चला कि भाई ये कहते हैं कि सम्मत दर्शन ज्ञान चरित्र से परिणमित आत्मा क्या सोचता है तो बहुत बड़ी बात कहेंगे, लेकिन वे तो नहीं कह लेंगे पुद्गल परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। कोई की वही बात तो कही जो अभी तक 37 गाथा में पहले से कहते आए थे और ग्रंथों में भी कहते आए थे। बहुत बड़ा बम्बार्डिंग करेंगे ऐसा तो नहीं, कुछ केवल ज्ञान सेवक ज्ञान से भिन्न कुछ ऐसा बताते कुछ और, कुछ ऐसा गजब निकालते नया अहा अहा वाला। ये बिना अहा वाला कैसे चल रहा है? क्यों क्यों वकील साहब, सीधे सच्ची कहती अन्य परमाणु मात्र भी मेरे नहीं है। और तो देखो क्या लिखा कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं उपयोग मैं हूं और मैं सदा अरूपी हूं। ये सदा शुरू में भी लगाया जा सकता है, इसे मध्य दीपक भी माना जा सकता है, अंत दीपक भी माना जा सकता है कि मैं सदा एक हूं, मैं सदा शुद्ध हूं, मैं सदा अरूपी हूं, मैं सदा उपयोग में हूं और अन्य परमाणु मात्र भी कभी भी मेरे नहीं है, माने मैं सदा नहीं है। ये पांचों जगह भी इसको लगा जा सकता है। पांच जगह लगाओ तो हो जाएगा मध्य दीपक, चार जगह लगाओ तो हो जाएगा अंत दीपक, ठीक है ना उत्तम जनी? चौथे गोल में लगा के नहीं लगा, और अकेले अरूपी में लगाओ तो फिर अकेला अरूपी अरूपी सदा है ऐसा लगा लो, तुम सदा के साथ लगा लो सदा अरूपी। लेकिन ये जो चार विशेषण है, ये पांचवा तो मैंने बताया अभी चर्चा आपसे की कि अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, तो अन्य परमाणु मात्र में वे गे भाव और भावक भाव दो ही प्रकार के भाव आते हैं जिनकी बहुत धुनाई पीछे की गाथाओं में हो गई है, इसलिए इसकी अभी चर्चा ज्यादा नहीं करते हैं, पहले ऊपर की बात करते हैं। देखो ऊपर तो उन्होंने कहते ज्ञानी कैसा सोचते हैं यहां से शुरू किया छावड़ा जी, और टीका में अत्यंत अप्रतिबुद्ध से शुरू किया। ये तो कहते हैं चौथे गुण स्थान वाले क्या सोचते हैं उसकी बात करते हैं, और ये कहते हैं कि हम अप्रतिबुद्ध नहीं अत्यंत अप्रतिबुद्ध, काला अक्षर भेष बराबर वाले से शुरू किया अमृतचंद ने। देखो क्या लिखा क्या कहते, देखो पढ़ो। जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, यानी अनादि की बात हुई, फिर कहते हैं मोह रूप अज्ञान के कारण अत्यंत उन्मत्तता के कारण, मैंने बिल्कुल पागल जैसा ही हो रहा था, पागल ही हो रहा था जैसा तो मैंने कहा, इसमें तो उन्मत्तता के कारण लिखा, पागल जैसा है इसका अर्थ पागल, उन्मत्त माने पागल हो रहे तो आप जानते ही हो ना, अनादि अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। ये जो बात जगत में चलती है कि ये तो बड़ी बातें हैं, ये तो नहीं बताना चाहिए, क्यों मैं शुद्ध हूं निरंजन हूं परमाणु मात्र मेरा नहीं है, देखो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसा जो अत्यंत प्रतिबुद्ध था अनादि काल से था, मैंने अनादि मिथ्या दृष्टि, ये जो वो सारी मिथ्या दृष्टि नहीं, अभी एक बार ही समय से प्राप्त किया नहीं है, गुरुदेव की भाषा में कहूं तो काने नहीं पड़ी है ये बात जिसके, काने नहीं पड़ी है माने माने देश में लब्धि का ही संयोग जिसको नहीं मिला है, विशुद्धि लब्धि और शिवसो लब्धि तो अनेक बार हो गई, क्योंकि तो वो क्रम में भी आती है ना, कसाई की मंदता और ज्ञान का थ्योपम आखिर नमक धीरे धीरे वैसे ही थोड़ा चला जाता है, कान में नहीं पड़ी है बात, नंद जी जाने वाले के तो कान में भी पड़ गई, क्योंकि दीक्षा बिना काम के पढ़ने पड़े थोड़ी ले ली उसने, और बिना वो मुनि दीक्षा लिए थोड़ी नमक धीरे तक जाता है, ऐसा शिष्य लेकर के और विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, तो विरक्त गुरु के द्वारा और निरंतर निरंतर तो गुरुदेव लेते खाली बैठे थे गुरुदेव, गुरु को धंधा नहीं कोई दूसरा, उन्हें अपने आत्मा का कल्याण नहीं करना है, तो शिष्यों को निरंतर समझाते रहेंगे, निरंतर समझाए जाने का क्या मतलब, और क्या किसी समझ जो जिनका कल्याण होना है सेवोपम जिनका अच्छा है उन्हें निरंतर समझाने की जरूरत है? तो क्या मतलब निरंतर समझाने का? कि गुरुदेव ने तो एक बार समझाया, नहीं आया समझ में तो दूसरी बार समझा दिया, फिर भी नहीं आया तो तीसरी बार, चौथी बार समझा दिया। सर्वोत्तम ज्ञान में जब तक नहीं बैठा तब तक दो चार बार समझा दिया, आखिर उसकी भी हद तो है कि लगे ही रहेंगे। लेकिन वो शिष्य, वो गुरु ने जो समझाया है उसका 24 घंटा अपने हृदय में घोलन करता है, इसका नाम गुरु के द्वारा निरंतर समझाया जाना है। कि साहब आप तुम्हें तो गुरुजी निरंतर समझाते रहते हैं और हमें तो समझाते नहीं थे निरंतर। कि भैया गुरुजी ने तो जितना समझाया है उतना ही समझाया है, ऐसा होता क्या नहीं होता? जैसे हमारे पास में विद्यार्थी पढ़ते हैं, अभी 75 हैं और निकल गए इतने, तो जिनकी जो क्लासें चलती थी तो हर अध्यापक ने वो विद्यार्थियों को किसी को कम किसी को ज्यादा पढ़ाया क्या? यदि किसी ने कम ज्यादा पढ़ा होगा तो वो खुद ही अनुपस्थित रह गया होगा, तो अपनी गलती से कम ज्यादा पढ़ा होगा। तो गुरु जी तो भेद किया नहीं और करना चाहे तो कर सकते नहीं। मेरी क्या ताकत है कि आप सब लोग यहां बैठे हो तो मैं किसी को ज्यादा समझाऊं किसी को कम समझाऊं? जो भी समझाऊंगा वो सबको बराबर ही समझने में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी मेरे हाथ में भी ये बात कहां है कि मैं किसी को कम और किसी को ज्यादा समझाऊं? किसा अकेले में समझा, अकेले में किसी को कहां समझाते हैं? ये धर्म की बातें ज्यादा अकेले में नहीं होती हैं, कि जितनी ज्यादा बातें अकेले में होती हैं वे समझना धर्म की नहीं है, तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सच बोलता मजाक नहीं करता हूं। भगवान ने धर्मोत्सव में बैठ के दिव्य ध्वनि में समझाया, आचार्यों ने भरी धर्म सभाओं में बताई, जैन दर्शन में ऐसा कान में मंत्र देने का है क्या? ये और जगह है कान में मंत्र देने का, कान में तो जहर उढ़ेला जाता है, अमृत कभी किसी ने किसी के कान में नहीं दिया। छाती पे हाथ रख के विचार करना मेरी बात पर, दो आदमी अग्नि अकेले में खड़े खड़े बात कर रहे हो ना, तो 99.9% वे तीसरे की गारंटी से बुराई कर रहे होंगे। देख लेना प्रयोग करके उसका प्रमाण क्या है। क्यों? उसका प्रमाण ये है कि आप उधर जाइए एकदम सतर्क। क्यों? यदि वो बहुत बढ़िया तत्व चर्चा कर रहे हैं, त्रिकाली ध्रुव की बात कर रहे हैं, तो सतर्कता की क्या जरूरत है? वो तीसरा भी सुन ले। यदि कोई अच्छी बात कर रहे हैं, देश के कल्याण की कर रहे हैं, समाज के कल्याण की कर रहे हैं, तो अभी सारी दुनिया सुन ले ना, तो भाई साहब तो फिर अंदर में उसको चुप होने की जरूरत क्या है, और फटाफट विषय बदलने की जरूरत क्या है, और ऐसा उंगली दबाने की जरूरत क्या है? क्यों? गारंटी से अमृत नहीं जहर उगल रहे थे, और हो सकता है उसी के विरुद्ध हो, नहीं तो इतनी ज्यादा छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देख लो आप, और यदि तीन हो गए फिर तो कुछ बात सॉफ्ट हो जाती है, फिर भी बुराई तो चालू रहती ही है, लेकिन तो भी सॉफ्ट, चार हुए तो और सॉफ्ट हो जाती है, और 10-20 हो गए त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा राग से अत्यंत सज्जनता की अत्यंत बढ़िया से बढ़िया बातें होने लगती हैं। जितनी ज्यादा भीड़ में कोई बात करेगा वो उतनी अच्छी बात करेगा। देखो अभी अपने कहा मुमुक्षु है ना, और तो कोई नहीं है क्या? मुमुक्षु कहा भैया, सोचना ऐसा है तो मुमुक्षु हो तो ये जहर शुरू हो जाएगा। कहीं पंडित जी मुमुक्षु नहीं है और दिगम्बर समाज पूरी है। अच्छा पूरी है? हाँ भैया बहुत अच्छा है, सब लोग पढ़ा। एक मिनट में पैसा पलटता है कि नहीं पलटता है? फिर कहा कि नहीं दिगम्बर से था सब है पंडित जी। अच्छा सब है, और जरा उधार हो जाता है पंडित। फिर कहा इतना सारे बाजार में स्पीकर लग रहे, जैन अजैन सब है, आपका व्याख्यान सुनने तो अजैन भाई भी बहुत आने वाले हैं। अच्छा फिर तो वसुदैव कुटुंब कम हो जाता है। करना है तो अकेले में बात करना ही बंद करो, धीरे धीरे बात ही करना बंद करो, एक कानों की गुप्पा चुप्पी बंद करो। अरे कानों में गुप्पा चुप्पी वाली बातें तो यार विषय कसार वाले करते हैं, कहीं कहीं करेंगे विषय सेवन करने वाले छपा छिपी करके गुपचुप बातें करते हैं, धीरे धीरे कानों में करते हैं, और या षड्यंत्र रचने वाले करते हैं या सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वाले करते हैं। बोलो, तत्व चर्चा के लिए तो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में समोसन में बैठकर हमारे तीर्थंकर ने डंके की चोट आत्मा परमात्मा की बात कही, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। भले आदमी, ये बात किसी के कान में फूकने की क्या जरूरत है? क्यों, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, ये मंत्र कान में फूके जाते हैं। क्या तुझे क्या डर है? जाने देना सब जगह, और उसे तत्व ज्ञान की सही बातें सुनने देना, समझने देना। यदि तेरी बात में दम है और माल है और सच्ची है तो उसे तरक्की कसौटी पे कसकर वो उसको ही स्वीकार करेगा। अपने तो शिष्य को आदेश दिया है कि आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से और परंपरा गुरु के उपदेश से और आत्मा के अनुभव से चार छेद में मिला करके स्वीकार करना। तो तू चार छेद से मिलाने देना उसे, युक्ति की कसौटी पे मत कसना। ये मत पूछना कौन से शास्त्र में लिखा है, क्या ये बात कौन करता है? अरे उसे आगम से मिलान करने देना। राम किशोर जी, हम जो कह रहे हैं उस बात को सारे जनागम से मिलान करने देना, उन्हें युक्ति की कसौटी पर कसने देना और अनुभव पर भी देखने दे। ये तीन पे जो प्रतिबंध लगाता है, क्यों? देखो भाई साहब, हमारा माल ले जाओगे दुकान से नीचे उतरे फिर हमारी वापस लेने की गारंटी नहीं है, पैकेट खोला उसके बाद हमारी वापस लेने की गारंटी नहीं है। ये बातें कौन करता है? अरे जिसका बढ़िया माल है, पूरा माल है कि तू दुकान से घर ले जा, सबको दिखा ला, घर से वापस कर जाना, पैकेट खोल के वापस कर देना, अरे बनी बनाई चाय वापस कर देना, अब पैसा ले जाना, हम पी लेंगे, तेरा दूध भी तो आएगा ना उसमें साथ में, हमारे बाप का क्या बिगड़ता है बेटा, है ना? जिसको अपने माल का पक्का भरोसा है, जिसने कोई मिलावट नहीं की है, जो स्वयं शंकाशील नहीं है, समझे ना, वो तो समोसरण में बैठकर 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में बोलता है। ये न सुने और ये नहीं सुने और ये नहीं सुने वाली बातें कहां से आई? क्यों, ठीक है नहीं? तो यहां कहते देखो भाई, ज्ञानी विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाना। निरंतर समझाए जाने का मतलब क्या, कि गुरु ने जो बात कही है उसका तुम निरंतर विचार करो, अपने साधनियों से चर्चा करो। गुरु तो तुम्हें बार बार नहीं मिलेंगे, और अन्य तुम्हारे कोई विद्वान हो तो उनसे भी चर्चा करके उसका निष्कर्ष निकालो, है ना? तो शास्त्रों में देखो, फिर मिलान करो, कहाँ नहीं मिलता है कहाँ मिलता है, ऐसा खूब मथो और फिर उसकी परीक्षा करो, तब उसका इसका नाम है निरंतर गुरु के द्वारा समझाया जाना। आप चाहो तो यार यहाँ के जो व्याख्यान हो रहे हैं ना उनमें निरंतर समझाना हो सकता है, और आप चाहें तो निरंतर नहीं होगा, लेकिन वही व्याख्यान को एक आदमी कैसेट करके ले जाएगा, फिर घर पे चार दफे सुनेगा, फिर विचार कहेगा उनने ऐसा कहा कि नहीं कहा, ये शंका हो जाए तो मेरे पास आएगा, आपने साहब ऐसा कहा था, मैं तो नहीं कहा था, मेरी में भूल तो नहीं हो गई है, ये बदल गए, ये बदल गए। यदि आपके पास कैसेट नहीं होगा तो आप एक कहने के अलावा आपके पास क्या है? ये पंडित कह के बदल जाते हैं, उनका भरोसा तो है नहीं, लेकिन आपके पास होगा तो आप कहेंगे देखो भाई ऐसा तो नहीं कि मेरी समझ में सुनने में गलत आया था। पहले अपने पे विश्वास करोगे और फिर सुनोगे और फिर भी निकलेगा और मैं बदला होऊंगा तो लाके मुझे सुनाओगे कि देखो साहब आपने ऐसा कहा था, तो वो तो ईमानदारी की बात हुई कि नहीं हुई? उसका नाम है निरंतर गुरु के द्वारा समझाए जाने पर सावधान होकर। देखो, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके देखे, इस न्याय से अपने परमेश्वर को, आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर उसका सिद्धांत कर उसका आचरण करके सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ ऐसा मैं यह अनुभव करता हूँ। ये चार लेन में अनादिकाल से लेकर सम्यक दृष्टि हुआ वहां तक लाके खड़ा कर दिया। क्या क्या प्रक्रिया में से पार होकर के सम्यक दृष्टि बना है वो वहां लाके खड़ा किया कि नहीं किया, देखो क्या कहते हैं। उदाहरण तो देखो कैसा गजब का सुना, सोने में मुट्ठी में रखा हुआ सोना, क्या अब भूल गया ये क्यों कहते हैं? मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया, खदान में गड़े हुए सोना को क्यों उसकी बात क्यों नहीं करते? कहीं घर में कहीं रखकर भूल गया उसकी बात क्यों नहीं करते? क्यों माने एक मुट्ठी के रखे की बात है, अभी अभी रखा होगा, कोई मुट्ठी में अनादिकाल से थोड़ी रखे लाया है, माने इसी भव की बात है, माँ के पेट से थोड़ी मुट्ठी में रखे लाया होगा, वो तो अभी अभी किसी ने दिया होगा, मेरे अंगूठी आई है दी है पहनने में उंगली में डाली तो वो जाती नहीं, किसी उंगली में गई नहीं, तो अगर वो बदलूंगा ऐसे तो अगर इसमें रख लिया बंद कर लिया, अभी ऐसा बंद करके रख लिया, अरे अभी छावड़ा जी ने अंगूठी दी थी कम ही सब दे रखे नहीं सुनता। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि कितना बड़ा मूर्ख है मूर्ख का बड़कपन बताने के लिए। हाँ मूर्ख का भी बड़कपन और कितनी बड़ी भूल, माने और कहीं तो दुनिया भूल जाती है। क्यों सोनलाल जी रस्ते में चश्मा तो कोई भी भूल जाता है, लेकिन आंख पे रखा चश्मा खबरा जी मेरा चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, चश्मा छोड़ा है, चश्मा छोड़ा है, भैया आप जा रहे हो चश्मा लेके आना सोनलाल जी, तो ये आप लगाए तो ऐसा बोलते है, ऐसी गलती समझे ना। संस्कृत में मूल में पढ़ा है लिखा है ना विस्मित चामी कर, शब्द पढ़ा के नहीं पढ़ा, निज कर तल विन्यस्त विस्मित चामी कर, इस संस्कृत में पढ़ा है। निज माने अपना देखो निज, और करतल माने हथेली, और विन्यस्त माने रखा हुआ, निज कर तल विन्यस्त हो गया ना, और विस्मृत माने भूला हुआ, चांदी कर माने सोना। फिर कितना शब्द पर संस्कृत का एक कोलो फलस्टॉप में अंतर नहीं है। निज कर विन्यस्त चांदी कर, अपने हाथ में रखे मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया था, अब क्या कहते हैं, फिर किसी ज्ञानी ने बताया कि तूने मुट्ठी में तो रख लिया था। ज्ञानी के काम को कितना हल्का कर दिया, हल्का कर दिया मैंने हल्का है वो काम, ऐसा नहीं मैंने ज्ञानी ने कोई गजब थोड़ी किया है, वह तेरे को इतना बता दिया कि तेरा सोना तूने मुट्ठी में रख लिया था। ये कहने का मतलब ज्ञानी ने कुछ दिया नहीं कि नहीं महाराज आपने गजब कर दिया मेरी अंगूठी मिल गई, यदि आप नहीं बताते ना तो मिलती ही नहीं, अपने इतने में हीरे की अंगूठी थी 2 लाख की थी, अरे मूर्ख हमने क्या किया, क्या कह रहे हमने कुछ किया ही नहीं, ज्ञानी ने कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही कहते हैं कि तेरी मुट्ठी में ही रखी हुई है अंगूठी, इसमें गुरु ने ऐसा कौन सा गजब काम कर दिया तो गुरु 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 गुरु, गुरु करता है, ऐसा करते हैं गुरु की महिमा कम करने के लिए, मतलब उन्होंने कौन सा बड़ा काम किया है, सारा माल तेरा, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, तेरा माल, गुरु जी का कुछ माल भी नहीं, तूने अपनी मुट्ठी में रखा और तूने ही रखा, किसी दूसरे ने रखवाया नहीं, फिर किसी ने कोई भुलाया नहीं, तुम्हें बोली बोली दे दी हो, जब बाजार में कोई ठग ठगा लेता है कि नहीं ठग लगाते, ये सब कह के कर्म बेचारे कि कौन भूल तेरी अधिकारी, एक कुगुरुओं ने भड़का दिया, और ऐसी 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 जो बहुत बहुत बातें हमारे दिमाग में घुसी हुई है ना, उनका निषेध के लिए ये बात है कि तूने अपना सोना अपनी मुट्ठी में रख लिया, अपने ही बंद कर लिया और स्वयं ही भूल गया, पर गुरुदेव ने से तुम्हें मुट्ठी में रखा था, इतनी से तो कहा है। बोलो मैं आपसे कहूं
कैसा बोला जी आपने गर्व कर दिया, नहीं तो फिर मेरा खो ही जाता, तो 2 लाख का नुकसान हो जाता, मैं तो आपके पैर पड़ता हूँ, मैं तो आपकी ऐसे से पूजा करता हूँ, पागल हो गया हो। अब मुझे समझ, मैंने क्या किया, मैं तो तुम्हें रखते देखा था, फिर इतना सा कह दिया तुम इतना उपकार क्यों। अरे साहब आप नहीं बता तो मिलती ही नहीं, अरे मिलती नहीं तो जाती कहाँ थी, तो मुट्ठी में अभी नहीं तो खोलता तब मिलता, रोटी खाता तब मिलता, नहाने जाता तब मिलता। महिमा तो तुझे इसकी आनी चाहिए थी ना, ये मेरी काय को आ रही है। ये गुरुदेव ऐसा बताने के लिए, आचार्य अपनी महिमा कम करने के लिए ये उदाहरण दे रहे हैं। मैंने तुझे क्या दे दिया, मैंने क्या बता दिया, बोले ना कि अपनी यहाँ पे बहुत बड़ी जमीन पड़ी है और अपने को खाने की व्यवस्था नहीं है, बहुत परेशान है। कोई नहीं कि तुम पागल हो, तुम्हारी तो हीरे जैसी जमीन पड़ी है, तुम इसमें एक कॉलोनी बसा दो, एक फ्लैट काट दो, अब भी यार करोड़पति बनते हो। कि साहब कौन लेगा, आप कैसी बात करते हो, ये तो जंगल है। अरे जंगल में मंगल हो जाता है। कैसे हो जाए कि तुम ऐसा करो कि पहले यहाँ एक मंदिर बनाओ, बढ़िया घोषणा करो, नींव डाल दो, कर्जा लेकर बैंक से इसी जमीन के बदले में 5 लाख का कर्जा लो और नीम डाल के और प्लंथ तक ले आओ कि मैं मंदिर बना रहा हूँ, और फिर आप 200 रुपया गज का ज्यादा भाव लगा कर एक काटो, कॉलोनी बस जाएगी। तो प्लंथ डाले कि हाँ बाकी तो मंदिर में कॉलोनी वाले बना लेंगे। क्या सच्ची बात नहीं है, तो कोई दूरी मूरी सब खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में बेचना चाहोगे तो कोई नहीं बेचा लेगा। कैसा अब आपने गजब कर दिया, हमें तो बिल्कुल कंगाल से करोड़पति बना दिया, ऐसा खाने की व्यवस्था नहीं थी, आपने आज हमको करोड़पति बना दिया, हम तो आप ही पूछा। मैंने तेरे को कह दिया तेरे बाप दादा की जमीन में क्यों, और मैंने तो तेरे वजह से सिंह घर बन गया, मुफ्त में मंदिर बना के गजरस कर दिया जो, और करोड़पति भी बन गया जमीन में खड़े खड़े होकर के, और इन्हें मर जाता पड़ी रहती। ऐसे ही तेरे अंदर पड़ा है, कुछ नहीं है, भगवान आत्मा तू तो स्वयं भगवान आत्मा है, बनाएगा तेरे को कोई क्या, तेरी तो करोड़ों की जमीन थी, हमने क्या बनाया, समझ गया ना आप जी में, ऐसा तू तो भगवान है। आज की दुनिया में ऐसा चलता है कि आप हमें बुद्धू बना रहे, फिर हम तुम्हें क्या बनाएंगे। यदि कोई हो ईश्वरवादी तो कहेगा वो तो भगवान काम पहले ही निपटा चुका है, तो अब इनसे नहीं हो तो कि हम क्या बनाए, तुम बने बनाए, समझ में आया कि नहीं आई, तो हमको बना बनाया बुद्धू समझता है और बुद्धू बनाने की सोचता है, और हमारे आचार्य कहते कि तुम बने बनाए भगवान हो, और हम तो तुम्हें सिर्फ बता रहे हैं कि तुम भगवान हो, हम बनाने वाले कौन होते हैं, पर्याय में भी बनाने वाले हम कौन होते हैं, तुम बनोगे तो बनोगे और हो तो हो, हम तो सिर्फ उस तरफ तुम्हारा ध्यान आकर्षित करते हैं और हमारा कुछ नहीं है। ये विस्मित चामी कर निज कर विन्यस्त, हाथ में रखे हुए सोने को ये उदाहरण दे के ये कहना चाहते हैं, ये बात कहना चाहते हैं कि भाई साहब इसमें दूसरे का कुछ नहीं है, सब तुम्हारा है, पूरी तैयारी है, बस पर्दा खोलने की देर है, बस तेरे को पता नहीं है, करोड़ों की संपत्ति तेरे घर में गड़ी है, सिर्फ तेरे को पता नहीं है। वो पता लगते ही तू खोज के निकालेगा तो तेरी ही है, किसी ने तेरे को दी थोड़ी है। इसमें गुरु को निरंतर समझाए जाने की क्या जरूरत है। क्यों मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपके घर में चूल्हे के नीचे 5 फुट अंदर जाकर के एक बहुत बड़ा घड़ा है, उसमें बहुत सोने सोने की मोहरे भरी पड़ी है रतन टंडी साहब, अब ये आपको कोई बतावे तो क्या घंटे तक समझावे इसके लिए, रोजीना प्रश्न चले इस पे मंदिर में, क्या एक बस चूल्हे के नीचे ना 5 फुट के, हाँ बस चूल्हे के नीचे के, हाँ बस खर बंद करो, पूरा व्याख्यान तो सुन लो, क्या नहीं भाग कहा सुनने का, अगली बात सुनने का क्या, सुन ली ना,
चले ऐसे खोदने ऐसा कहने पत्थर निकलेगा तो ऐसा खोदने ऐसा नहीं करना। अरे वो सब कर लूंगा मैं, सब निपटा लूंगा ये सब, लेकिन खुदवाई के लिए पैसा नहीं है। अरे सारे पर देने वाले हजार खड़े हैं, क्यों? लेकिन तेरे को तो हार्ट अटैक हो गया तो तू मेहनत नहीं कर सकता है, धीरे धीरे चल, तेरे हार्ट बार्ट वो तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए तो हार्ट अटैक हुआ था। जब कुछ नहीं है, हाय राम क्या करूं, हाय राम क्या करूं, अब तो सब ठीक हो जाएगा। क्या हो जाता है? तो मैं पूछता हूँ, लंबे उपदेश की जरूरत है? सचमुच यदि तेरे को ये भरोसा हो गया कि मेरे घर चूल्हे के नीचे 5 फुट नीचे माल गड़ा है, ये भरोसा हो जाए तो और लंबे व्याख्यान की जरूरत नहीं है ना। ऐसे ही तेरा देह देवल में भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है, वो अनंत गुणों का अखंड पिंड है, ऐसा भरोसा हो जाए तो अगले व्याख्यान की कहाँ जरूरत है? ये व्याख्यान पूरा हो इसकी भी गुंजाइश कहाँ है? यही बैठे बैठे हमारा व्याख्यान चलता रहेगा और वो तो अंदर चला जाएगा, कौन रोके? जैसा तुम्हारा व्याख्यान नहीं सुनेगा अंदर चला जाएगा, चला जाना चाहिए। तीर्थंकर भगवान के समोसरण में भी मुनिराज श्रोता बन के बैठते हैं और भगवान की वाणी सुनना बंद करके कई दफे आत्मा में अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वाणी तो फुटती है 6 घड़ी माने 3 अंतर्मुहूर्त, और वे अंतर्मुहूर्त से ज्यादा बाहर रहे तो मुनि धर्म ही नहीं रहे। तो हर मुनि गारंटी से जाता है कि नहीं भगवान की दिव्य ध्वनि छोड़ के अंदर में, के नहीं बोलो। आपने अच्छा बता दिया कि हम भी जा सकते हैं। अभी तो हम समझते थे कि जी यहाँ से कहीं हम दूसरी जगह चले गए ना उपयोग हमारा, तो हम उपयोग भ्रष्ट हो गया, तो हम बराबर कोशिश करते थे कि उपयोग भ्रष्ट नहीं हो। अब आपने अच्छा बता दिया कि हम जा सकते हैं कहीं, अरे कहीं भी नहीं, आत्मा में, और जगह जाएगा तो मरेगा। तो कहीं भी की बात है कि आत्मा में जाने की बात है? बोलो। इसी का नाम समझावट, तो समझ में नहीं आए तभी तक है ना, तो मूल मुद्दे की बात समझ में आ गई तो अब तो काम करने का है। अब वो काम हो गया कि नहीं होता है, दोनों बातें। यदि हमने पुरुषार्थ किया और फिर भी नहीं हुआ, अथवा वो काम हो गया फिर उपयोग बाहर आ गया हमारा, हमारा दर्शन हो गया, हमारा दर्शन ज्ञान चाहते एक साथ प्रकट हो गया और उपयोग बाहर में आ गया, और चाहे नहीं हुआ और फिर लौट के उपयोग बाहर में आ गया, उत्तम चंद जी, तो अब क्या करना? उसके लिए अर्थी सुनी जा रही है। ज्ञानी का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से प्रणिमित आत्मा का चिंतन कैसा होता है, संचेतन कैसा होता है? तो बस मैं एक हूँ, सिद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण। तो जो बात गुरुदेव ने बताई थी बस सोचो, यदि अनुभव हो गया हो तो अनुभव में आई थी बस सोचो, और अनुभव नहीं हुआ तो गुरुदेव ने बताई थी शास्त्र में पढ़ी थी बस सोचो। तो चिंतन तो एक ही जैसा होगा, क्योंकि तो गुरुदेव ने भी वही बताई थी, शास्त्र में भी वही बताई थी और इसमें भी वही लिखी थी। देखो ये 12 भावनाएं है ना, तो अपने मुनि धर्म के प्रकरण में आई है, आया ना, सा गुप्ती समझी धर्मानुपरीक्षा परिसर जय चारित्र, मुनि धर्म के में आई ना। और खेड़ाला में भी श्रावक धर्म के बाद में जब मुनि धर्म शुरू होता है तब वहां से शुरू की है, देखा ना, मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी ब्रह्मोगन के बैरागी, तो मुनियों की है, फिर गृहस्थों को करना क्या नहीं करना? क्यों? तो गृहस्थों का अनुभव चिंतन करना क्या नहीं करना? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि मुनियों के कैसे हैं गृहस्थों की है? ये लिखा तो लिखा, मैं क्या करूँ इसके लिए? लेकिन आगे तो वो लिखते हैं सुतदारा हुए न सीरी सब स्वार्थ के हैं भूरी। अब महाराज बेटा क्या सोचना, महाराज तो छोड़ के ही चले गए, उनके सुतदारा है ही क्या? झगड़ाना नहीं, पूरी बात सुनना, अधूरी सुन के मत जाना, नहीं तो झगड़ा हो जाए, है ना। सुधारा हो ना सीरी सर स्वार्थ के हैं धीरी, ये जो सोच रहे हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ, वे तो सुधारा को पहले ही छोड़ चुके हैं, मैं ऐसा क्यों सोचेंगे? ये तो सुधारा वाला सोचेगा। तो गृहस्थों की बात हुई ना, गृहस्थों की मुख्यता से बात है कि नहीं? पर लुदिन लाद में थैली की कैसे बसा देते हैं मैली, अस देह करे कमियारी, वे कौन सी यारी कर रहे हैं उस देह से? मैं तो बेचारा एक जन भी आहार दे में तो दे में, नहीं दे में तो नहीं दे में,
ऐसी पाली जाती है दोस्ती, दोस्ती ऐसी की जाती है, प्यारी ऐसी होती है, खूब खिलाए पिलाए नहाए धोए आई तो ऐसी होती है। दे तो वो छूट नहीं रहा साथ उनका, बच रहे तो आज छोड़ दे। मुनि आदमियों को ये बात सोचने की कहां जरूरत है, क्यों? अच्छा और बताऊ, दाम बिना निर्धन दुखी और कृष्णा बस धनवान। अब दाम बिना निर्धन दुखी का उन्हें क्या लेना देना है, तो दाम माम सब छोड़ चुके, नग्न दिगंबर हो गए। ये तो सब ग्रस्तों की बातें हैं क्या? नहीं बोलो। दलबल देवी देवता और मात पिता परिवार, कहा है मात पिता परिवार? मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। वे मात पिता परिवार है क्या जो बचाने की? वो उनसे आशा करता है कि हमें बचा लेंगे। और मणि तंत्र मंत्र बोलते हैं क्या वो? अगर दवाइयां लेते हैं क्या वो? तो ये उनकी क्या? ये बातें तो सब ग्रस्तों जैसी लगती है। बोलो दुलीचंद जी, ये ग्रस्तों के लिए है क्या? नहीं क्या? हाँ हाँ, वो ग्रस्तों ने लिखी है ना, दौलत राम ने, दौलत राम जी ने लिख दी है। तो तुम आचार्यों की बारे भावना उठा के देख लो, उन्होंने भी ऐसी बातें लिखी क्या? नहीं लिखी है? तो भाई भाई, ये तो कोई मुख्यता उनकी है सबके लिए, ग्रस्तों के लिए भी है और मुनिराजों के लिए भी है। तो मुनिराजों के लिए क्यों है? कि उनके कोई बाल बच्चे तो नहीं है, धन तो नहीं है, लेकिन ये बाल बच्चों वाले और धन वाले उनके ज्ञान के गे तो बनते हैं कि नहीं बनते हैं? क्यों बगी साहब, बनते हैं आपके यहाँ के नहीं बनते हैं? उनके ज्ञान के गे तो बनते हैं ना, और कभी कभी मन ललचा भी जाता होगा तो वो ना ललचाए इसके लिए उन्हें जरूरत है। वो पुष्पडाल मुनि की कहानी आती क्या नहीं अपने यहाँ? क्या अपनी कहानी? पत्नी की याद आती थी, पत्नी तो नहीं थी, याद आती थी अकेली भाई साहब। तो उनके साथी ने क्या नाम, विष्णु कुमार बारी सेन ने, तो उन्होंने जो कुछ किया था, तो मतलब वहां चल के भी कहीं मंदिर के कोने में कोई विकल्प कदाचित खड़ा हो तो वो भी उसको सिर उठाने की कोशिश नहीं करे और वहीं दफन जाए, इसके लिए उन्हें उसकी जरूरत है। हवा जी ठीक है कि नहीं? तो ग्रस्तों के लिए भी हो गई और मुनिराजों के लिए भी हो गई। तो मिथ्या दृष्टियों के लिए है भाई साहब के नहीं? क्या मिथ्या दृष्टियों के लिए? सबके लिए है, उसमें क्या दिक्कत है? ये भाव मोहते न्यारे, जो ज्ञान बिता दे के सारे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मिथ्या दृष्टि की सोच है, ये तो अमृत है। तो ये तत्व ज्ञान की चर्चा भले ही ज्ञानी धर्मात्मा सर्वा सिद्धि के अरविंद करते हो, हम तो भैया मिथ्या दृष्टि है तो क्या हम लठ मारे के गालियां बके? हम तत्व चर्चा नहीं कर सकते? नहीं नहीं, तत्व चर्चा तो वो सम्य दृष्टियों की बात है। तत्व चर्चा तो सम्य दृष्टि कहते हैं, अरविंद तो सम्य दृष्टि होते ना, वे तत्व चर्चा कहते हैं। महाराज के तत्व चर्चा का काम तो महाराज ध्यान तो महाराजों का काम है, और तत्व चर्चा सम्य दृष्टियों का काम है। तो हमारा काम क्या है? पाप करना, क्यों धंधा पानी करना, नरक नगोद में जाना हमारा ये काम है? वो तो मुख्यता जी दृष्टि से बात की है। अरे मिथ्यात्व की भूमिका में भी ये तत्व तत्व मिथ्या दृष्टि को नहीं समझाएंगे आचार्य तो किसको समझाएंगे? मैं आपसे बोलो, तत्वार सिद्धानम सम्य दर्शनम, तो सात तत्व मिथ्या दृष्टि सीखेगा कि नहीं सीखेगा? छह द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय, जब इनके जाने बिना सम्य दर्शन नहीं होता है तो इनको वो मिथ्यात्व की भूमिका में जानेगा कि नहीं जानेगा? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? बोलो। ऐसे मुफ्त में बंटवारा किया, जे उनका कोई किसी का बंटवारा जिनवाणी में नहीं है। मैं एक ही बात कहकर समाप्त करता हूँ कि जब भगवान ने समूह में बैठ के उपदेश दिया था तो उन्होंने कहा होगा 5 से 6 बजे तक ये मुनियों के लिए व्याख्यान होगा और 6 से 7 बजे तक भाष्य 5वें गुणस्थान वालों के, फिर 14वें गुणस्थान वाले, फिर मिथ्या दृष्टियों, फिर घोर मिथ्या दृष्टियों का, क्यों ऐसे अलग अलग व्याख्यान होते थे? क्यों जतीश भाई? तो एक ही सभा, उसमें गणधर देव भी श्रोता, द्वादश अंग का पाठी सौधर्म इंद्र भी श्रोता, और गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी श्रोता, और एक ही चर्चा सबके लिए त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा चल रहा है। तो हमारे पास प्रमाण है ना, कौन सा पेट देख के दिखाने की जरूरत है? बोलो, पेट खोल के दिखाने की जरूरत है क्या उसमें? ये तो सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं ना। बाहर है कोठा थे समोसरण में, और वहां पर देवों से लेकर पशु पक्षी और मुनिराज और अर्जिका साहब उसमें बैठे थे कि नहीं बैठे थे? और एक साथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही थी, तो वो हर बात के सबके लिए था कि नहीं था? तो जिनवाणी का हर बात के सबके लिए है, और हम उसमें बंटवारा करना शुरू कर दिया, जे उनका जे उनका जे उनका पढ़, ये इनका ग्रंथ जे उनका पढ़ने का, ये जो मुनिराज के पढ़ने का, ये ग्रस्तों के पढ़ने का, ऐसा है ही नहीं। तो कहा तो है ना, भगवती आराधना मूलाचार मुनिराजों का है, अनागाय धर्मामृत मुनिराजों का है, सागा धर्मामृत ग्रस्तों का है। इसका अर्थ तो दूसरा है। क्या दूसरा है? कि इसमें ग्रस्त धर्म का वर्णन है, इसका नाम ग्रस्तों का। ग्रस्त पढ़े और बाकी के लोग नहीं पढ़े, इसका नाम ग्रस्तों का नहीं। और अनागाय धर्मामृत इसमें मुनि धर्म का वर्णन है, इसका मतलब मुनियों का। ग्रस्त नहीं पढ़े ऐसा अर्थ नहीं, भले ही वो मुनि नहीं है, लेकिन सच्चे देव सास गुरु की श्रद्धा तो सम्मान दर्शन का लक्षण में शामिल है कि नहीं? तो गुरु का स्वरूप उसे जानना कि नहीं जानना? सम्मान दर्शन होने के लिए, होने के लिए जानना, तो मिथ्या दृष्टियों को भी पढ़ना कि नहीं? बोलो, अनागा धर्मामृत मिथ्या दृष्टि पढ़े कि नहीं पढ़े? इनका सम्मान दृष्टि भी नहीं पढ़े, क्योंकि पढ़ लेंगे और जान लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जिन्हें ज्यादा पता लोगों को उतना ही अच्छा है, क्यों? लेकिन सम्मान दर्शन प्राप्त करना है, सत्य देव साधु की श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं? तो जो गुरु का स्वरूप जिसमें बताया हो, वो शास्त्र मिथ्या ऋषि को पढ़ना चाहिए कि नहीं? बोलो। अरे भाई, ऐसा कोई भेद है ही नहीं। जहां कहीं बताया है तो क्रम की दृष्टि से, क्या भैया तुमको अभी, तुमने बिल्कुल अभ्यास नहीं है तो ये गोमरसार बहुत कठिन है, अभी तुम्हारी समझ में आएगा नहीं। पहले बालबोध पाठमालाएं पढ़ लो, फिर गोमरसार पढ़ना, फिर समयसार पढ़ना। तो इसका मतलब रोक नहीं है। वो पद के हिसाब से कहां रोक हुई? वो तो हमारी योग्यता के हिसाब से, सरलता और कठिनता के हिसाब से रोक हुई। लेकिन आप समझ सकते हो तो आपको रोक नहीं है। इसलिए यहां कहते हैं भाई कि वो ज्ञानी और अज्ञानी का जिनवाणी के अनुसार दोनों का है, इसलिए उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है।